તન મળ્યો મનુષ્ય અવતાર માંડ કરીને,
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 તે તો ભજન હી ભગવાન હે ધરીને,
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 માટે રામ નામ સંભાળ,
માટે રામ નામ સંભાળ,
તન મળ્યો મનુષ્ય અવતાર માંડ કરીને,
તન મળ્યો મનુષ્ય અવતાર માંડ કરીને,
તે તો ભજન હી ભગવાન હે ધરીને,
તે તો ભજન હી ફૂલ પાસી ફેર નહીં આવે મૂરખ મૂંધ ગવાર, ગઈ ફૂલ પાસી ફેર નહીં આવે મૂરખ મૂંધ ગવાર, ભવસાગર ની ભૂલવણી માં પ્રીતિ ગયા જુગ ચાર,
ભવસાગરની ભૂલવણીમાં
વીતી ગયા જુગ ચાર, જઠરાગ્નિમાં જુગતે રાખ્યો રાખ્યો નવ વસધાર, ભવસાગરની ભૂલવણી વીતી ગયા જુગ ચાર, ફેરા ફરીને તને ભણ્યો મનુષ્ય અવતાર માંડ કરીને,
માને રામ નામ સંભાળ, તને મળ્યો મનુષ્ય અવતાર માંડ કરીને, તે તો મજા નહી માટે રામ નામ સંભાળ,
કલયુગ ફૂલો રોંગે રોડો કે તન આવે પાર, કલયુગ ફૂલો રોંગે રોડો કે તન આવે પાર, જપ તપ તીર્થ કાંઈ ન કીધું, જપ તપ તીર્થ કાંઈ ન કીધું, એક નામ આધાર કૃષ્ણ કહીને, તને મળ્યો મનુષ્ય અવતાર માંડ કરીને, માટે રામ નામ સંભાળ,
તને મળ્યો મનુષ્ય અવતાર માંડ કરીને, એ તો મજા નહીં ભગવાન માટે રામ નામ સંભાળ,
તને મળ્યો મનુષ્ય અવતાર માંડ કરીને, તે તો ભજ્યા નહીં ભગવાન હે ધરીને, તેથી ખાસ જમનો માર પેટ ભરીને, માટે રામ નામ સંભાળ,
मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि भजन नहीं करते हैं, भगवान की कथा और कीर्तन नहीं सुनते हैं, तो यमराज जी के डंडे मिलते हैं। श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद में यमराज जी अपने दूतों को कहते हैं जो लोग अपनी जीवा से भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, जीवहान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जो लोग अपने जीवा से कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर नरक में लाओ, हम लोग उसकी पिटाई करेंगे। यमदूतों ने पूछा कि प्रभु तो फिर इस संसार में जितने भी गूंगे हैं, बोल नहीं पाते हैं, वे तो सब लोग डायरेक्ट यहां पर आ जाएंगे। जीवा वाले तो ठीक है, भगवान का नाम लेंगे, ये तो बेमौत मारे जाएंगे बिना कुछ किए। तो यमराज ने कहा कोई बात नहीं, जिसकी जीवा है, जिसके पास बहुत सुंदर भगवान ने जीवा दिया है, वो यदि कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं तो उसे लाओ, और जिसके पास जीवा नहीं है उसके पास मन तो है। कहते हैं चेतस्य न स्मरति तत् चरणारविंदम, जिसका मन भगवान की लीला को और भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता है उसे पकड़ पकड़ कर लाओ, हम बहुत पीटेंगे। तो यमदूत ने कहा कि हम तो यहां वापी में, सूरत में, बंबई में जाते रहते हैं, कुछ लोगों के पास मन भी नहीं होता है, बुद्धू होते हैं, मूर्ख मूढ़ जैसे होते हैं, उसका क्या होगा प्रभु। तब भगवान ने कहा ठीक है, चलो बुद्धि नहीं है। यमराज जी ने कहा कि ठीक है बुद्धि नहीं है, कम से कम भगवान के सामने झुक तो पाएंगे। कृष्णाय नो नमति यत शिर एक दाबी, जो एक बार भी कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता है, ऐसे सालों को पकड़ पकड़ कर लाओ, हम लोग बहुत पीटेंगे। ये सत्य है, भागवत में यमराज जी का कथन है। यदि यमराज जी से बचना चाहते हैं तो भगवान के सामने यह झुका देना चाहिए, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य मनुष्यों का, हजाम के सामने अपना सिर झुका देता है, पत्नी के सामने झुका देता है, परंतु भगवान के सामने नहीं झुकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके अपना सिर गुरु और भगवान के सामने जो नहीं झुकाता है, ऐसे सिर को तो काट देना चाहिए। सो सिर कटी संबर तुला, जोन नमत गुरु हरिपद मूला। जिसका सिर गुरु और हरि के चरणों में नहीं झुकता है उसका सिर सिर नहीं है। तो भगवान का भजन जो करते हैं उसके असुर राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने जब यह कहा तब परीक्षित महाराज के हृदय में सुख हुआ कि अब तो हमारे भगवान बच जाएंगे, क्योंकि वात्सल्य भाव मर रहा था। तब सुखदेव गोस्वामी गोकुल में क्या हो रहा है यह कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सा खेचर्य एक दोपत्य पुतनानंद गोकुलम, योषित्वा माय यात्मानम प्राविश्चत कामचारिणी। कहते एक दा, एक समय की बात, कौन सा समय था? कहते हैं वसुदेव जी के वहां से नंद महाराज निकल गए थे, उसी दिन रात का समय था। ये पूतना नंद गांव में गोकुल में रात को आई थी, सुबह नहीं आई थी। तो एकदा उस रात की यह बात है, पूतना नंद गोकुलम आगत्य, पूतना नंद महाराज के गोकुल में आई, और किस प्रकार से आई? योषित्वा माय यात्मानम, योषित्वा बहुत सुंदर स्त्री का रूप बनाकर आई, और माय या योग माया से, योग माया के द्वारा पुतना ने अपना बहुत सुंदर रूप बनाया। यद्यपि वह राक्षसी थी परंतु माया के द्वारा अपना रूप बदल दिया। और कैसा रूप था उनका? जैसे गोपियों का रूप होता है, यशोदा जैसे वस्त्र पहनती है, ऐसा रूप बनाकर आई। परीक्षित महाराज के मन में संशय हुआ कि ये पूतना कहीं पर भी जल जाती थी। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हां, क्योंकि वह कामचारिणी थी, कामिनी थी। वास्तव में जो कामी स्त्री होती है वह कहीं पर भी चली जाती है। पूतना के लिए कहते हैं कामचारिणी, कामी थी, इसलिए वे नंद बाबा के गोकुल में वहां पर उपस्थित हुई। उनका रूप कैसा था? सुखदेव गोस्वामी गाते हुए कहते हैं, ताम केश बंद व्यतिशक्त मल्लिकाम ब्रह 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 नितंब स्तन कृच्छ मध्यमाम सुवास संकल्पित कर्ण भूषण त्विशो लसत कुंतल मंडितान ताम। कहते हैं कि उनकी चोटी में बहुत सुंदर मालती के फूल लगे हुए थे। देखिए राक्षसी अपने बालों में, जैसे यशोदा मैया कल हमने सुना मालती के फूल लगाती थी, वैसे पूतना भी अपने सिर में बालों में मालती के फूल लगा कर आती थी, आई थी। और उनका शरीर बहुत सुंदर, वो अपना फिगर बनाकर अपना शरीर बनाकर आई थी। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी और मोटी थी, परंतु बहुत सुंदर अपना रूप बनाया। सुवास संकल्पित कर्ण भूषण, सुवास सम बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने थे। वस्त्र क्या पहना था? जींस और टी शर्ट। पूतना ने, पहले की राक्षसी भी जींस और टी शर्ट नहीं पहनती है। देखिए भागवत में क्या लिखा है, राज के अच्छे लोग जींस टी शर्ट कर्ट्स पहनते हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, लोग कहते हैं हम प्रगति कर रहे हैं। प्रगति क्या कर रहे हैं? कपड़े छोटे कर रहे हैं और अपने आप को प्रगतिशील मानते हैं, हम प्रगति कर रहे हैं। वास्तव में ये प्रगति प्रगति नहीं है। पहले के राजा महाराजा रानी जो होती थी, वह इतने ऐसे कपड़े पहनती थी, ऐसे कपड़े पहनती थी कि अपने शरीर का एक अंग भी दिखता नहीं था। वह चलती थी तो कपड़े पीछे पीछे घसीटते हुए चलते थे, एक अंग भी नहीं दिखता था। और आज धीरे धीरे अपने कपड़े कम करते जा रहे हैं। वास्तव में स्त्रियों को चाहिए कि मर्यादा में रहे। पहले की राक्षसी भी मर्यादा में रहती थी। देखिए वस्त्र कौन से पहने थे? कहते गोपी ड्रेस पहना था, गोपियां जो वस्त्र पहनती थी वैसा वस्त्र। परंतु आज की सोफिस्टिकेटेड स्त्री अपने आप को कहती है, परंतु जींस और टी शर्ट छोटे छोटे कपड़े पहनती है। रामायण में वर्णन है, जब जगत जननी माता सीता भगवान के साथ विवाह करके अयोध्या में आई, तब उसकी वस्त्र भूषा ऐसी थी कि सीता की वस्त्र भूषा को देखकर कैकेयी इतनी प्रसन्न हुई कि सीता को सोने का महल ही दे दिया। कैकेयी जिस महल में रहती थी, उस महल का नाम कनक भवन, जो आज भी है अयोध्या में। सीता को देखकर इतनी शालीन मर्यादा में है, सीता की मर्यादा को देखकर कह दिया, बहू आज से तुम इस घर में रहो और मैं बाहर। कई बहू मन में चिंतित होती हैं और अपनी सास को गाली देती हैं कि पूरे घर का जो हिसाब किताब है और घर की तिजोरी की चाबी अपने ही पास रखती है, कभी हमको नहीं सौंपती। कैसे सौंपेगी? हम में कुछ मर्यादा होगी, कुछ शालीनता होगी, तब सौंपेगी। कई कई ने सौंप दिया क्योंकि मर्यादा थी। आज तुम्हें मर्यादा होना बहुत जरूरी है। इतना सुंदर भगवान ने हमको जीवन दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है मनुष्य जीवन, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि मर्यादा नहीं है तो यह मनुष्य जीवन कुछ काम का नहीं है। मैं अक्सर एक दृष्टांत देता हूं, मान लो आपको कोई मर्सिडीज बेंज कार दे दे जो 1 करोड़ की आती है, और आप उसके ट्रायल में जा रहे हो और 200 की स्पीड में चल रही है गाड़ी, और गाड़ी देने वाला आपको फोन करे, कैसी लगी? आपको बहुत अच्छी है। स्टेयरिंग कैसा है? पावर स्टेयरिंग बहुत अच्छा है। टायर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। सीट कैसी है? बहुत अच्छी है। रंग कैसा है? बहुत अच्छा है। स्पीड कैसी है? बहुत अच्छी है। परंतु फोन में अंत में इतना कह दे, ठीक है परंतु गाड़ी में ब्रेक नहीं है, जरा संभाल के चलाना, क्या होगा? 200 की स्पीड में आप चल रही है और पता चला कि ब्रेक नहीं है, तो कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, गाड़ी का कितना भी अच्छा रंग हो, कितनी भी अच्छी सीट हो, कितना भी अच्छा स्टेयरिंग हो और कितनी भी अच्छी स्पीड हो, परंतु यदि ब्रेक नहीं है तो वो गाड़ी कुछ काम की नहीं है। वैसे ही कितना भी अच्छा यह मनुष्य देह हो परंतु मर्यादा नहीं है तो यह मनुष्य जीवन कुछ काम का नहीं है, कोई काम का नहीं। मर्यादा होनी चाहिए, मर्यादा से हमारी सुंदरता बढ़ती है। मर्यादा होनी चाहिए स्त्री के जीवन में, परंतु लोग सोचते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। प्रगति नहीं है, दुर्गति है। ये तो आप देखिए, लोग मानते ही हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, तो विचार कीजिए क्या प्रगति हुई। आज से 50-100-150 साल पहले ये जो जूते थे, जूते जो हम पांव में पहनते थे वो रास्ते में मिलते थे और भोजन दुकान में मिलता था, परंतु आज जूते एयर कंडीशन शोरूम में देखने मिलेंगे और भोजन सब्जी वाले रास्ते में घूमते रहे। जो खाना है, भोजन करना है, भगवान को भोग लगाना है, वे सब रास्ते में मिलेंगे और पांव में पहनने वाले जूते ऐसी शोरूम में मिलेंगे। क्या ये प्रगति है? आज से 50-100 साल पहले लोग घर पर भोजन करते थे, भोजन घर पर करते थे, भोजन घर पर करते थे और बाहर जाते थे खेत में इत्यादि। परंतु आज भोजन सब लोग बाहर होटल में पानी पूरी रगड़ा पेटिस खाते हैं और घर पे आकर जाते हैं। क्या ये प्रगति है? अपने आप को मानते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, प्रगति नहीं दुर्गति है। पूतना कहते हैं कि बहुत सुंदर सुवाससम, सुंदर वाससम, बहुत सुंदर वस्त्र पहन कर आए थे। और सुंदर वस्त्र उसे कहा जाता है जिससे हमारे शरीर का एक अंग भी न दिखे। यह सुंदर वस्त्र सुवाससम कल्पित कर्ण भूषणम, कान में जो कर्ण थे बहुत सुंदर, कर्ण में कुंडल लगाए हुए थे और धीरे धीरे हिल रहे थे। तुषा उसकी चमक से बहुत सुंदर यह व्रज सुशोभित हो रहा था, शोभायमान हो रहा था और उसका मुख बहुत सुंदर लग रहा था। वल्गुस्मित, वह बहुत सुंदर मंद मंद मुस्कान कर रही थी। देखिए, हंसने वाला व्यक्ति सदैव अच्छा लगता है, और थोबड़ा चढ़ाकर बैठा है वह अच्छा नहीं लगता है। राक्षसी है फिर भी वल्गु स्मित, बहुत सुंदर सुंदर स्मित प्रस्तुत कर रही थी। वल्गु स्मित पांग विसर्ग विक्षितेर, और कटाक्ष पूर्ण, कटाक्ष के साथ अपनी चितवन से सबको देख रही थी। मनोहरंतिम वनिताम वजोकसाम, व्रज में रहने वाली सभी वनिताओं के, व्रज में रहने वाली सभी गोपियों के मन को हर रही थी। पूतना जब गोकुल में आई तो सबका मन पूतना की ओर हरता जा रहा था। अमन सताम भोज करेण रूपिणी, और वह पूतना अपने हाथ में कमल को घुमाते घुमाते आ रही थी। इतने सुंदर वस्त्र, इतना सुंदर रूप था, इतना सुंदर तेज था और हाथ में वस्त्र था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रज में रहने वाले सभी गोप और गोपियों को लगा कि ये तो साक्षात लक्ष्मी जी आ रही है अपने प्रभु नारायण को मिलने के लिए। गोपिय शिय दृष्टु मिवा गतम पति, जिसे लक्ष्मी अपने पति को मिलने के लिए जाती है, वैसे यह लक्ष्मी नारायण को, कृष्ण को साक्षात मिलने के लिए आ रही है। इस प्रकार से ब्रजवासियों को मोह रही थी, और मोहते मोहते सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बालक ग्रह तत्र विचिन्वती शिशुन प्रदीक्षयानंद गृहे सदंतकम। पूतना इस प्रकार से धीरे 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 ब्रज में नंद बाबा के घर के निकट आ गई और किसी ने उसे नहीं रोका, क्योंकि सब लोग पूतना को साक्षात लक्ष्मी समझते थे। हरीशुरी जी बहुत सुंदर अपनी टीका में लिखते हैं कि जिसका हृदय अच्छा होता है, जिसका हृदय अच्छा होता है वे बुरे से बुरे व्यक्ति को भी अच्छा समझते हैं। जिसका हृदय अच्छा होता है, जो भक्त होते हैं वे बुरे से बुरे को भी अच्छा समझते हैं, परंतु जिसका हृदय अच्छा नहीं होता है वे अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी बुरा समझते हैं। आई है पूतना, राक्षसी है, परंतु उसे लक्ष्मी समझते हैं। परंतु जो गलत लोग हैं, जो पापी हैं, वे तो लक्ष्मी को भी गाली देते हैं, भक्त को भी गाली देते हैं। तो इस प्रकार से पूतना, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बालक ग्रह तत्र, बालकों के लिए ग्रह के समान थी। जैसे किसी बालक को ग्रह लग जाता है, ग्रह माने वैसे तो बहुत सारे ग्रह नड़ते हैं, शनि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। वास्तव में कलयुग में तो ग्रह हमें नहीं नड़ रहे, हम ग्रह को नड़ रहे हैं। ग्रह क्या हमारा बिगाड़ लेंगे। एक बार एक व्यक्ति किसी ज्योतिष के पास गया और जाकर हाथ दिखाया, गुरुजी देखिए क्या मेरे हाथ में लिखा है। तो कहा तुम्हें मंगल नड़ रहा है। अरे बाप रे, मंगल नड़ रहा है, अब क्या करें। तो कहा कि सोने की अंगूठी दान में देनी होगी। सोने की अंगूठी गुरुजी कितने की आती है। गुरुजी ने कहा 3,000 की। कहा 3,000 हमारे पास नहीं है। तो गुरुजी ने कहा तो 1,000 तो होगा। 1,000 भी नहीं है तो कहा 500 तो होगा। 500 भी नहीं है तो कहा 50 तो दे दे। 50 भी नहीं है तो 5 तो दे दे। 5 भी नहीं है तो मंगल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तू मंगल का बिगाड़ेगा। हम लोग ग्रह को नड़ रहे हैं। यहां कहते हैं बालक ग्रह तत्र, जो बालकों के लिए ग्रह के समान थे। ग्रह में भी शनि देव बहुत डेंजर ग्रह है भाई, शनि का ध्यान रखना चाहिए। पुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार शनि देव और लक्ष्मी देवी दोनों आपस में मिल गए और शनि ने कहा कि देखो कितना अच्छा लग रहा हूं। लक्ष्मी ने कहा तुम नहीं मैं अच्छी हूं। दोनों के बीच में होड़ हो गई। शनि ने कहा मैं अच्छा हूं, लक्ष्मी ने कहा मैं अच्छी हूं। लक्ष्मी जी कहती है शनिदेव आपसे मैं सुंदर हूं। शनि ने कहा मैं सुंदर हूं। अब दोनों झगड़ रहे थे, मैं सुंदर मैं सुंदर मैं सुंदर मैं सुंदर। नारद मुनि वहां से निकले। शनि ने कहा ए नारद यहां यहां, हम दोनों के बीच में ये बहुत बड़ा प्रश्न है, दोनों में से कौन सुंदर है। अब नारद तुम ही बताओ हम दोनों में से कौन सुंदर है। नारद मुनि दुविधा में फंस गए, धर्म संकट में। यदि शनि को सुंदर कह दे तो लक्ष्मी जी की कृपा हट जाएगी, और यदि लक्ष्मी को सुंदर कह दे तो शनि इतने बिगड़ेंगे जीना हराम हो जाएगा, अब क्या करें। दोनों को प्रसन्न रखना है और दोनों के बीच में प्रश्न। नारद मुनि ने कहा मुझे मत पूछो, और किसी को पूछ लो, मैं तो ब्रह्मचारी, मैं क्या जानू सुंदर कौन होता है असुंदर कौन होता है। शनि ने कॉलर पकड़कर कहा नारद तुझे ही जवाब देना है। क्या करे अब नारद मुनि। नारद मुनि ने कहा देखो इतने करीब खड़े हो, थोड़े दूर तो जाओ तब जाकर डिसीजन लूंगा। नारद मुनि ने कहा कि 10 मीटर आप थोड़े दूर चलकर वापस आओ, तब तक मैं देख लूंगा, क्योंकि आज भी फैशन शो होता है तो खड़े खड़े रिजल्ट नहीं लिया जाता है। फैशन शो में भी सब लोग चलते हैं। तो कहा दोनों का फैशन शो होगा, ये आज का फैशन शो नहीं है, बहुत पुराना है। तो लक्ष्मी और शनि ये दोनों चले और चलकर वापस आए। नारद मुनि ने कहा जवाब मिल गया। नारद मुनि ने जो जवाब दिया अद्भुत जवाब दिया। नारद मुनि ने कहा देखो ये लक्ष्मी जी जो है वो जब आ रही थी तब सुंदर लग रही थी, और शनि जी आप जब जा रहे थे तब सुंदर लग रहे थे। और ये सत्य है, लक्ष्मी जी आना यही सुंदरता है और ये शनि का जाना। ये ग्रह बहुत नड़ते हैं, पता नहीं लगता है व्यक्ति को कौन सा ग्रह कैसे नड़ रहा है। कहते पूतना ग्रह के समान थी। बाल ग्रह तत्र विचिन्वती शिशुन, और बालक को खोज रही थी, साक्षात कृष्ण को ही खोज रही थी। यदि छयानंद गृह सदंत कम, और यह पूतना डायरेक्ट गोकुल में नंद बाबा के घर पर आ गई। यद इच्छया, अपनी इच्छा से कोई नहीं रोका पूतना को। सुंदर स्त्री है, इतनी सुंदर थी कोई रोक ही नहीं रहा था। व्यक्ति सुंदरता के कारण मोहित हो जाता है। और सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, पूतना की सुंदरता, पूतना का मुख बहुत सुंदर था। वे कहते हैं, गोप्य श्रियम दृष्टु मिवा गताम पतिम त्विशा लोत कुंतल मंडिता नाम। पूतना का मुख इतना सुंदरता अद्भुत। परीक्षित ने पूछा कि प्रभु पूतना का मुख इतना सुंदर क्यों लग रहा था? तो कहते हैं, त्विशाल लसत कुंतल मंडित, मंडित त्विशा। कहते हैं कि पूतना के सिर पर, मुख पर बहुत सुंदर अलके थी। मैं जब ये पढ़ रहा था आज सुबह, तो मेरे मन में प्रश्न हुआ, ये अलग का अर्थ क्या होता है? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पूतना का मुख बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि उनके सिर पर बहुत सुंदर अलके थे। तो ये तो स्त्रियों का चैप्टर है। मैंने कहा, अलग का अर्थ क्या होता है? फिर मैंने राधिका को पूछा, अलग अर्थात लट। जो आगे लट खींचते हैं उसे अलग कहते हैं। अब पता चला कि स्त्री लोग लट क्यों रखते हैं। नहीं तो मुझे तो अब तक यही था कि बेचारी स्त्रियां परेशान होती हैं, बाल आगे आ जाता है तो रखने में। परंतु आज पता चला तो ये तो शोह के कारण रखती है। बेचारी इतनी परेशान होती हैं, आगे आती हैं पीछे करती हैं, आगे आती पीछे करती हैं आगे। हम तो सोचते हैं कि हम जाकर बांध दे इसकी लट को। ये लट बहुत खतरनाक है। एक बार एक व्यक्ति का विवाह हुआ और विवाह होकर अपने घर पर आया। 2-3 साल बीते, देखने में बहुत लड़का सुंदर था, लड़की दिखने में बहुत बेकार थी और स्वभाव भी उनका कर्कश था और इतनी झगड़ालू थी। उनके घर वालों ने कहा कि ऐसी लड़की को लेकर क्यों आया? एक व्यक्ति ने पूछा कि इसको लेकर क्यों आया, इसके साथ विवाह क्यों किया? तो उसने कहा, उसकी जो लट थी वो बहुत सुंदर थी। अरे मूर्ख, यदि लट अच्छी लगी तो उसे काट कर लाया होता ये पूरे। पूरे गोडाउन को उठाकर लेकर आया। बहुत सुंदर अलग उनके मुख पर थी और उस अलग के कारण संसार के उस गोकुल में रहने वाले सब लोग उन पर मोहित हो चुके थे। तो इसलिए उसे कोई नहीं रोका। यद इच्छया, वे स्वतंत्र गति से नंद गृह आगतम, नंद के गृह में अंतकम वे आ गई। एक आचार्य अपनी टीका में लिखते हैं, यत इच्छया, यत का अर्थ होता है भगवान। वास्तव में पूतना डायरेक्ट नंद बाबा के घर पर आई, ये भगवान की इच्छा थी। भगवान की इच्छा क्यों हुई पूतना मेरे पास आए? भगवान कृष्ण ने सोचा कि यदि ये पूतना मेरे पास नहीं आएगी तो दूसरे किसी के घर पर जाएगी और कई बालकों को मार डालेगी। उससे तो अच्छा ये डायरेक्ट मेरे पास आए और इसका क्रियाकर्म कर दूं। तो यद इच्छया, भगवान की इच्छा से पूतना नंद बाबा के घर पर आई। और असद अंतकम, जैसे दुष्टों का काल होता है, दुष्टों के काल के समान यह पूतना भगवान के पास आई। बालम प्रतिच्छन निजोर तेजसम ददर्श तल्पे अग्नि मिवाहितम भसी। और पूतना नंद बाबा के घर पर आई। यशोदा और रोहिणी दोनों वहां पर खड़ी थी, परंतु पूतना के रूप को देखकर दोनों साइड में हो गई। और पूतना जब आई तब भगवान श्री कृष्ण पालने में सो रहे थे। और उस समय पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को देखा। किस प्रकार देखा? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पूतना भगवान को समझ नहीं पाई। वे दृष्टांत देते हैं। जैसे आपने गांव में देखा होगा चूल्हा होता है, गांव में गैस और स्टोव नहीं होता है, गोबर का चूल्हा बनाया जाता है, उसमें लकड़ी डालकर खाना पकाते हैं। तो चूल्हे में जब खाना पकता है, जब खाना पक जाता है, तब लकड़ी जो होती है वैसे ही पड़ी रहती है और उस पर राख जम जाती है, तो लगता है कि यह लकड़ी बुझ गई है, शांत है, परंतु जैसी वह राख ऊपर से हट जाती है वह लकड़ी ओले के समान गर्म रहती है। ठीक उसी प्रकार उस लकड़ी के समान जिसके ऊपर राख जम गई है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, बाहर से भगवान को नहीं पहचान सकी, परंतु अंदर से अग्नि के समान थे, स्पर्श होते ही मरने वाली थी। विबुद्ध ताम बालक मारिकाग्रहम चरा चरात्मा समिलित इक्षणम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूतना नंद बाबा के घर पर आई और भगवान श्री कृष्ण को देखा। कृष्ण कैसे हैं? चर अचर आत्मा। भगवान श्री कृष्ण चर और अचर के आत्मा, आत्मा का अर्थ होता है परमात्मा, चर का अर्थ होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सके, और अचर का अर्थ होता है जो एक स्थान पर स्थित रहे। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, इसलिए भगवान इस संसार के चर अचर सभी जीवों के बारे में जानते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी चराचर आत्मा कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान सभी जीवों के हृदय में रहकर सब के बारे में जानते हैं। वेदा हम समतितानी, तो क्या पूतना के बारे में नहीं जानते होंगे? जो भगवान इस संसार के समस्त जीवों के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानते हैं, वे भगवान, वे चराचर आत्मा भगवान श्री कृष्ण पूतना के बारे में जान गए, पूतना के इरादे को जान गए, यहां पर क्यों आई है, और पूतना को देखकर उन मिलित क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी। भगवान श्री कृष्ण पूतना को देखते ही आंखें बंद कर दी, पलने में सो रहे हैं परंतु आंखें बंद। श्रीमद् भागवत पर अनेक आचार्यों ने अपने मत लिखे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर दी, इस पर आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है। श्री हरिशूरि जी, श्रीपाद वल्लभाचार्य ने इन पर भर भर के लिखा है, कृष्ण ने आंखें क्यों बंद कर दी। कुछ भावों को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहला भाव यह कह रहे हैं कि पूतना जो है अविद्या है, और भगवान ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, भगवान के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, और यदि मैंने आंखें खोल दी और ये पूतना मेरे सामने टिकेगी नहीं तो फिर इसे मार नहीं पाऊंगा, और इसे यदि नहीं मारा तो ये संसार के कई बालकों को मार डालेगी। तो भगवान ने सोचा आंखें खुली रखूंगा तो ये जलकर भस्म हो जाएंगी, इसलिए आंखें बंद कर देना ही ठीक है। इसलिए उन मिलित क्षणम आंखें बंद कर दी। अल्वाचार्य जी दूसरा भाव देते हैं, पूतना का अर्थ होता है पूतम अपि नयति इति पूतना, जो निर्दोष बच्चों को ले जाए उसे पूतना कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पालने में सोते सोते सोचा कि बच्चों को मारने वाली, वास्तव में बच्चों को कभी नहीं मारा जाता है, बच्चों को मारने वाले को कायर कहा जाता है। वैसे बच्चों को जान से भी नहीं मारना चाहिए, थप्पड़ भी नहीं मारनी चाहिए, बच्चों को कभी नहीं मारना चाहिए। भागवत में आया है, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम बालम स्त्रियम जड़म, जो मत है, प्रमत्त है, उन्मत्त है, जो स्त्री है, बालक है, ऐसों को कभी नहीं मारना चाहिए, ऐसों को मारने वाले को आदताई या कायर कहा जाता है। तो यह पूतना बालकों को मारने वाली है, बालकों को मारने वाली को कायर कहा जाता है। भगवान ने सोचा ऐसे कायरों का मुख देखना उससे तो अच्छा है आंख बंद ही कर ले, इसलिए उन मिलित क्षणम भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। देखिए ये सारे भाव मैं यहां पर बोल रहा हूं, इसके बाद दोपहर को यहां पर क्विज होगा, बहुत सारी गेम्स होगी, प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसमें यह प्रश्न आ सकता है, इसलिए सब लोग याद रखें। मैं सबको पूछूंगा, करीबन 20-25 भाव है, भगवान ने आंखें क्यों बंद कर दी। देखिए भागवत का केवल एक शब्द है, परंतु एक शब्द के ऊपर कितना लिखा जा सकता है, कितना बोला जा सकता है। भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर दी। भगवान तीसरा भाव देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी आंख बंद करके देखने लगे ध्यान में। आंखें बंद करने का एक भाव यह है कि भगवान ध्यान करने लगे कि इस जन्म में तो पूतना बहुत पापी नहीं है, सबको वध करने वाली, सबको मारने वाली कायर है, परंतु भगवान आंखें बंद करके देखने लगे कि पिछले जन्म में कुछ अच्छा कार्य किया है कि नहीं। यदि पिछले जन्म में अच्छा कार्य किया है तो मैं इसे छोड़ देता हूं। तो इस भाव से भगवान आंख बंद करके देखने लगे पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया है कि नहीं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी। चक्षु उन मिली तम। चौथा भाव देते हैं कि भगवान ने सोचा कि ऐसी मां का दूध मैंने कभी नहीं पिया, ये पूतना जैसी मां का दूध मैंने कभी नहीं पिया। क्योंकि पूतना का दूध तो कैसा होगा, जो अच्छी मां होती है वे शाकाहारी होती है, शाकाहार भोजन करती है, उसका दूध अच्छा होता है। परंतु जो दूसरे का मांस खाने वाली मां का दूध तो कड़वा होगा। मांस खाने वाली पूतना जैसी मां का दूध तो कड़वा होगा, और दवाई भी कड़वी होती है। दवाई कड़वी होती है कि नहीं, तो आप देखिए जब बच्चे को दवाई पिलाते हैं तब उसकी आंखें कैसी होती हैं, बंद हो जाती हैं। भगवान ने सोचा कि इसका दूध दवाई जैसा कड़वा है, ये दूध पिलाएगी, यह सोचकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। कितना सुंदर भाव है। एक आचार्य पांचवा भाव देते हैं, भगवान के अंदर अनंत जीवों का वास है, और पूतना अपने स्तन पर कालकूट नाम का विष लगाकर आई थी। तो भगवान के अंदर जो जीव है वे तो आकुल व्याकुल होने लगे कि पूतना यह जहर पिला देगी और हम सब भगवान के अंदर है, जैसे ही यह जहर अंदर आ जाएगा तो हम मर जाएंगे। तो उस समय भगवान आंखें बंद करके अपने अंदर के जीव को कह रहे हैं, डरो मत, आप चिंतित मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी, अपने अंदर के जीव को सांत्वना देने के लिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। भगवान का आंख बंद करने का छठा कारण देते हैं, भगवान सोचे कि मथुरा से गोकुल में आया, क्यों आया, दूध पीने के लिए। भगवान ने सोचा कि मथुरा से गोकुल आया दूध माखन मिश्री खाने के लिए, और ये आई है विष पिलाने के लिए। मथुरा को छोड़कर यहां आया दूध माखन मिश्री खाने के लिए, और ये फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मथुरा से यहां आ गई जहर पिलाने के लिए। तो भगवान ने सोचा मेरा काम दूध माखन और मिश्री खाना है, ये जहर पीने का काम शिव जी का है, ये डिपार्टमेंट उनका है। तो भगवान आंख बंद करके शिव जी को बुलाने लगे, ध्यान करने लगे, शिव जी आपके लायक एक भोजन आया है। ये सत्य है, भगवान शिव वास्तव में शिव जी तो विष तो शिव जी जैसे भक्त ही पी सकते हैं। ये कथा भागवत के अष्टम स्कंद में बताई गई है। भागवत के अष्टम स्कंद में जब समुद्र मंथन हुआ देवता और असुरों के द्वारा, और उस समुद्र मंथन में बहुत सुंदर, सुंदर नहीं, हलाहल विष निकला समुद्र से, 12 रत्न निकले, उनमें से सबसे पहला रत्न विष था, और वह विष का नाम था कालकूट विष, और वही विष यह पूतना अपने स्तन पर लगाकर आई थी। और वह कालकूट विष हलाहलम, सुखदेव गोस्वामी वहां लिखते हैं हल हला हलम, वे विष जैसे ही समुद्र से निकला दसों दिशा में फैलने लगा, और दसों दिशा में रहने वाले लोग एक एक करके मरने लगे। और उस समय देवता और असुर समुद्र मंथन को छोड़कर भागे। तब भगवान विष्णु ने कहा शिव जी के पास, इशारा कर दिया, तो सब लोग शिव जी के पास भागे। सारे देवता शिव जी के लोक में कैलाश में आए और शिव जी के पास आकर शिव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। भक्तों ने बहुत सुंदर गाया है।
शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी
शिव के शरण में गए और भगवान शिव ने उस कालकूट नामक विष को अपनी दोनों अंजलि के द्वारा अपने मुख से धारण कर लिया। शिव जी ने उस विष को पिया परंतु फिर भी शिव जी को कुछ नहीं हुआ। प्रश्न उठा कि शिव जी ने इतना हलाहल विष पीने के बाद भी उसे कुछ क्यों नहीं हुआ। तब आचार्य गण उत्तर देते हैं, क्योंकि शिव जी भगवान के परम भक्त थे और शिव जी ने जब विष पिया, विष पहले पीने से पहले अपने मुख से रा शब्द निकाला और विष पीकर म शब्द निकाला, राम नाम के प्रभाव से शिव जी को विष कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये सत्य है, गरल सुधा रिपु करई मिटाई, यदि भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो तो विष भी अमृत हो जाता है। और यदि किसी पर भगवान की कृपा न हो तो विष अमृत भी विष हो जाता है। शिव जी ने विष पिया परंतु यह विष अमृत के समान नीलकंठ उनका नाम हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण आंखें बंद कर लिए, आंखें बंद करके सोचे कि शिव जी ये आपका काम है, आपके लायक आइटम आई है, ये मेरे लायक नहीं है। मेरे लायक दूध दही माखन मिश्री है, ये आपके लायक है, आप इसे पी। और सत्य सुखदेव गोस्वामी आगे कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने जब पूतना का दूध पिया तो दूध कृष्ण ने पिया परंतु विष जो था वह शिव जी ने पिया। आगे श्लोक में आएगा, रोष के साथ रुषा इवर, शिव जी का एक नाम है रुषा। तो इस प्रकार भगवान ने आंखें बंद कर दी। सातवां भाव देते हैं, कृष्ण ने आंखें क्यों बंद की। हरीश्वरी जी कहते हैं कि भगवान के दोनों नेत्रों पर सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, एक नेत्र पर सूर्य और एक नेत्र पर चंद्रमा। मृत्यु के बाद जीव को जब ऊर्ध्व गति मिलती है तो वे सूर्य मार्ग से या तो चंद्र के मार्ग से जाता है। मृत्यु के बाद जिसने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, वे या तो सूर्य के मार्ग से जाता है या तो चंद्र के मार्ग से। तो नेत्रों ने, सूर्य या चंद्र ने सोचा कि भगवान तो कृपालु है, इस पूतना को अच्छी गति प्रदान करेंगे, अर्थात यह पूतना ऊर्ध्व गति से ऊपर की गति से मेरे पास आएगी, भगवान के पास जाएगी, परंतु हम इसे गति देंगे, परंतु हम इस पूतना को नहीं देखना चाहते हैं। पूतना को यद्यपि भगवान ऊर्ध्व गति देंगे, अच्छी गति देंगे, परंतु हम नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए सोम और सूर्य ये दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। आठवां भाव बताते हैं कि भगवान के नेत्रों ने सोचा कि यद्यपि पूतना के नेत्र हमारी जाति के हैं, नेत्र ने सोचा, भगवान के नेत्र भी सोचते हैं, तो भगवान के नेत्र ने सोचा कि पूतना के भी नेत्र हैं, हमारे भी नेत्र हैं, नेत्र नेत्र दोनों एक जाति के, तो पूतना के नेत्र यद्यपि हमारी जाति के हैं परंतु एक वह नेत्र दुष्टा की शोभा बढ़ा रहे हैं। पूतना के शरीर में भी नेत्र हैं परंतु दुष्ट की शोभा बता रहे हैं। तो निमि महाराज नेत्र के ऊपर बैठे हैं, निमि महाराज सबके नेत्र के ऊपर बैठे हैं, भगवान के नेत्र ने सोचा कि पूतना के नेत्र हमारी जाति के हैं तो क्या हुआ, नेत्र एक जाति के तो क्या हुआ, दुष्टा के नेत्र है इसलिए उसे देखने का कोई साहस नहीं करना है। यदि एक ही जाति के व्यक्ति हो, एक ही परिवार में हो और दोनों भाई भी क्यों न हो, परंतु एक भाई भक्त है और दूसरा अभक्त है, तो भक्त को चाहिए कि अभक्त की बात कभी न माने, क्योंकि उसकी बात मानकर व्यक्ति भगवान से अलग हो जाएगा। ये नेत्र दोनों एक जाति के हैं परंतु फिर भी वे पूतना के नेत्र को नहीं देखना चाहे, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। नवा भाव देते हैं, कृष्ण के नेत्र राजहंस हैं। भगवान के नेत्र को बड़े बड़े कवि भागवत में राजहंस कहा गया है और पूतना बकी, पूतना के एक नाम बकी है, बकासुर की बहन है। पूतना का नेत्र बगुले के समान है, और भगवान ने सोचा मेरा नेत्र राजहंस के समान है। सो राजहंस बगुले का दर्शन कैसे करेगा? छोटे मोटे लोगों का दर्शन राजहंस नहीं करता है। शायद यही सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी। दसवां भाव देते हैं, भगवान ने सोचा यदि मैं आंखें खुली रखूंगा तो ये सोचेगी कि ये बच्चा है, निडर है। भगवान ने सोचा यदि मैंने आंखें खुली रखी तो ये पूतना सोचेगी अरे ये तो इतना निडर है, आंखें खुली रखा है, और वो मुझे सोचेगी कि मैं निडर हूं, और मुझे निडर समझकर वे यहां से चली जाएगी, भाग जाएगी, और ये भाग जाएगी तो इसे और कोई नहीं मार पाएगा, इसलिए भगवान ने अपनी आंख बंद कर ली। ग्यारहवां भाव देते हैं, भगवान ने सोचा कि मैं इस संसार में लीला करने आया हूं, मैं इस जगत में लीला करने आया हूं और अपनी लीला से सबको आनंद कर देने के लिए आया हूं। परंतु भगवान बहुत दुखी हुए, आया हूं कुछ अच्छा काम करने के लिए और मुहूर्त में ही यह पूतना सामने आ गई। भगवान श्री कृष्ण के का जन्म हुआ 6 दिन हुआ था, 6ठे दिन यह पूतना आई थी। आया हूं कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, लीला करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए, परंतु मुहूर्त में ही, ओपनिंग में ही यह सामने आ गई। ओपनिंग में ही किसी को उड़ाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, यह सोचकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। 12वां भाव देते हैं, कृष्ण के मन में यह बात आई, कृष्ण के मन में कृष्ण ने सोचा कि करुणा की दृष्टि से यदि मैं पूतना को देखूंगा आंखें खुली रखकर, क्योंकि भगवान की आंखों में अद्भुत करुणा है, यदि मैंने पूतना के सामने करुणा की दृष्टि से देखा तो यह मरेगी नहीं, और यदि मैंने इसके सामने क्रोध की दृष्टि से देखा तो जलकर भस्म हो जाएगी, लीला नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान ने सोचा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आंखें बंद कर दो, अपनी लीला की सिद्धि करने के लिए, अपनी लीला को सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। 13वां भाव दे रहे हैं, भगवान ने सोचा कि ये धात्री का रूप बनाकर आई है, मां बनकर आई है, परंतु मुझे मारने के लिए आई है। यदि धात्री के रूप में दर्शन हुआ, भगवान ने सोचा यदि आंख खुली रखी और आंख खुली रखकर यदि मैं उसे मां समझूंगा, मां के रूप में दर्शन हुआ तो मैं इसे मारूंगा नहीं, और इसे यदि मारा तो ये अन्य बालकों को, इसे नहीं मारा तो ये अन्य बालकों को मार डालेगी, तो आंख बंद कर लेना ही ठीक है। यदि मैं इसे मां समझ लिया और मुंह से एक बार भी मां निकल गया तो इतनी बड़ी राक्षसी मेरे हाथ से मरेगी नहीं, क्योंकि मां को मैं कैसे मार सकता हूं। 14वां भाव दे रहे हैं, बड़े से बड़ा अनिष्ट योग से निवृत्त हो जाता है। कितना भी बड़ा अनिष्ट हो, कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, अब रोग के लिए सब लोग जानते होंगे, मान लो कोई भी रोग हुआ हो तो रामदेव बाबा कहते हैं ये योग करो ठीक हो जाएगा। कुछ भी क्यों ना हुआ, कैंसर हुआ हो, टीबी हुआ हो, मोटापा हो, कुछ भी हो, रामदेव बाबा ने सारे योग बना दिए हैं। तो एक आचार्य बहुत सुंदर भाव देते हैं कि कितना भी बड़ा अनिष्ट हो योग से वह ठीक हो जाता है, परंतु योग करते समय आंखें खुली होनी चाहिए या बंद? बंद होनी चाहिए। कितना भी बड़ा अनिष्ट योग से निवृत्त हो जाता है, तो भगवान ने सोचा इतना बड़ा अनिष्ट आया है, चलो रामदेव बाबा की बात को मान लेते हैं। यही सोचकर भगवान ने योग करने के लिए बैठे और आंखें बंद हो गई। बहुत सुंदर भाव है। 15वां भाव देते हैं, पूतना व्रज के सभी बालकों को मारते हुए आई, यद्यपि भगवान की माया से पूतना को एक भी बालक नहीं दिखा था। भगवान ने सोचा जो मेरे सखा है, जो मेरे भक्तों को मारने के लिए आई है, और जो वास्तव में भक्तों को परेशान करते हैं, मारते हैं, उनका अनिष्ट सोचते हैं, उनका मुख कभी नहीं देखना चाहिए। यह सोचकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। वास्तव में भगवान के भक्तों का जो अपराध करते हैं उसके साथ कभी रहना तो नहीं चाहिए, परंतु उसका मुख भी कभी नहीं देखना चाहिए। 16वां भाव देते हैं, पूतना वेश बदल कर आई थी। यदि भगवान आंखें खुली रखें तो वे अपना मूल स्वरूप प्रकट हो जाता। भगवान की आंखें खुलने पर पूतना का मूल स्वरूप प्रकट हो जाता, क्योंकि भगवान की आंखें आंखें नहीं, एक्सरे मशीन है, उनकी आंखों से सब कुछ दिख जाता है। और भगवान ने सोचा कि इसका मूल स्वरूप यदि प्रकट हो गया तो यशोदा मैया को हार्ट अटैक आ जाएगा, देख नहीं पाए, क्योंकि इसका रूप बहुत भयावह था। आगे आएगा उसके रूप का वर्णन। यदि मैंने आंखें खोल दी तो पूतना का रूप प्रकट यहीं पर हो जाएगा, और यशोदा रोहिणी दोनों बाजू में खड़ी है। अचानक यदि पूतना अपने मूल स्वरूप में आ गई तो मेरी मां को तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। मां को हार्ट अटैक न आए इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। 17वां भाव देते हैं कि भगवान पूतना का वध करना चाहते थे। यद्यपि पूतना पुत्र वध करने पर, यद्यपि पूतना का वध करने पर उसका उद्धार होने वाला था, परंतु फिर भी किसी स्त्री को मारना एक गलत काम है, किसी भी स्त्री को मारना एक क्रूर कर्म है। इसलिए यह सोचकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली कि मैं आंख बंद करके मारूंगा, खुली रखूंगा तो लोग मुझे कहेंगे स्त्री को मारा, पुरुष को मारा। मैं कहूंगा आंखें बंद करके इसे मार दिया, मैं नहीं जानता था स्त्री था पुरुष था। यह सोचकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। 18वां भाव देते हैं, स्नेहमयी माता पिता जो होते हैं वे अपने उत्श्रृंखल पुत्र को दंड देते हैं। वास्तव में अच्छे माता पिता जो होते हैं अपने पुत्र को दंड देते हैं, परंतु माता पिता के हृदय में बहुत दुख होता है। वैसे यह पूतना आखिर तो भगवान का ही अंश है, भगवान की पुत्री है, तो भगवान उसे दंड देना चाहते थे, परंतु बहुत भयावनक दंड देना चाहते थे। इसलिए भगवान उनके पिता है और पिता समझकर भगवान ने आंखें बंद कर दी। मेरे बालक को ऐसा दंड दूंगा। 19वां भाव देते हैं, छोटे बालकों का स्वभाव होता है अपने मां के सामने प्रेम से खेलते हैं, परंतु छोटे बालक मां के अलावा कोई अपरिचित व्यक्ति को देख लेता है तो आंखें बंद कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी तरह से खेल रहे थे, परंतु यह पूतना अपरिचित बाल घातनी अचानक कृष्ण के सामने आई तो कृष्ण की आंखें बंद हो गई। 20वां भाव देते हैं कि भगवान वास्तव में पूतना को मारना चाहते थे, और यदि आंखें खुली रखे तो भगवान पूतना को कभी न मार सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे भाव सुखदेव गोस्वामी के इस कथन पर लिखा गया है। स निमिल इते क्षण, भगवान ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर दी, और अनंत आरोप पदंक मंतकम यथोरघम सप्त बुद्धि रजूधि। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना कृष्ण के पास आई, कृष्ण के पास आकर पूतना ने कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना जब कृष्ण को पकड़ने के लिए आई, यशोदा और रोहिणी को पूछा कि मैं इस लाला को गोद में ले सकती हूं। यशोदा ने तो अपना भाग्य समझा, अरे वाह, आज तो हमारे सौभाग्य खुल गए कि साक्षात लक्ष्मी मेरे कृष्ण को गोद में लेगी। यशोदा तो चाहती थी कि यह मेरे कान्हा को गोद में ले। यशोदा जी के भाग्य खुल गए, और उस समय यशोदा और रोहिणी दोनों अपने घर का काम करने के लिए किचन में चली गई, और यहां पर पूतना अकेली है। और अकेली पूतना ने भगवान श्री कृष्ण पल्ले में सो रहे थे और कृष्ण को ऐसे उठा लिया। सुखदेव गोस्वामी दृष्टांत देते हैं, जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति, कोई मूर्ख व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति किसी सांप को रस्सी पकड़कर उठा लेता है। अनजान व्यक्ति जैसे सांप को रस्सी समझकर उठा लेता है, वैसे ही पूतना को कृष्ण के प्रभाव को न जानने वाली पूतना साक्षात कृष्ण को क्या उठाया, अपने काल को ही हाथ में उठा लिया, अपने काल को हाथ में उठा लिया। ताम तीक्ष्ण चित्त तिवाम चेष्टिताम विक्षांतरा कोप परिच्छ दासीवत वरस्त्रियम तत् प्रभयाच दर्शिते निरीक्ष माने जननी यतिष्ठताम। उस समय पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को उठाया और उठाकर पूतना अपने स्तन पर काल कुट नाम का विष लगाकर आई थी। कृष्ण पूतना का दूध पीना नहीं चाहते थे, परंतु पूतना ने जबरदस्ती अपना स्तन कृष्ण के मुख में रखा, कृष्ण के मुख में रखा, कृष्ण पूतना का दूध पीने लगे। पीते 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 पूतना का सारा दूध पी गए। कहते हैं पूतना के दूध के साथ पूतना का काल पीने लगे, पूतना का प्राण पीने लगे। अस्त में वल्लभाचार्य जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि पूतना इसके पहले कई सारे बालकों को मार चुकी थी। गोकुल में नहीं, गोकुल में तो किसको कैसे मारे, परंतु अन्य अन्य जगह पर पूतना जाती थी, बालकों को मारती थी, तो कई बालकों को मार चुकी थी, बालकों का प्राण पी चुकी थी। वे सब बालक पूतना के अंदर थे। वल्लभाचार्य कहते हैं कि भगवान ने पूतना के दूध के साथ वह प्राण भी पी लिया और पूतना के शरीर में जो बालक थे जिसका पूतना ने वध किया था उस बालकों को भी अपने हृदय में अपने शरीर में धारण कर लिया और ये सब को मुक्त कर दिया और भगवान का धाम प्रदान कर दिया। परंतु एक आचार्य कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूतना का दूध कैसे पिएंगे। दूध उसका पिया जाता है जो शुद्ध शाकाहारी भोजन करता है, मांस खाने वाले। वास्तव में रुषा के साथ, क्रोध के साथ भगवान पूतना का दूध पिए, वह जहर शिवजी पिए और पीने लगे, पीने लगे, पीते पीते पूते पूतना का सारा दूध समाप्त हो गया। पूतना के स्तन का दूध समाप्त हुआ, पूतना का काल पीने लगे, पूतना विवल होने लगी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सा मुंच मुंच अलम इति प्रभाषिणी, वह पूतना, वह प्रभाव वाली पूतना मुंच मुंच, अरे छोड़ अरे छोड़। अब पूतना रह नहीं सकती थी, परंतु हमारे कृष्ण भी अद्भुत भगवान है, वैसे तो किसी के हाथ में आते नहीं है। भक्त लोग बहुत पकड़ने का प्रयास करते हैं, परंतु हाथ में आसानी से हाथ में नहीं आते हैं, और जिसके हाथ में आ जाते हैं तो फिर छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। पूतना के पास आना नहीं चाहते थे और आ गए तो पूतना अब कहती है छोड़ छोड़, मुंच कारता है छोड़ छोड़ छोड़, परंतु भगवान छोड़ नहीं रहे थे। भगवान श्री कृष्ण नन्हे से बालक थे, पूतना का दूध पी रहे थे, 6 दिन का बालक। अब तो पूतना का प्राण निकलने लगा, अब जो रूप बनाकर आई थी वह रूप बनाकर नहीं रख सकी, अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने लगी। और रूप बहुत बड़ा था इसलिए पूतना दौड़कर उस नंद बाबा के घर से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वह पूतना सा खेचरी खेचरी आकाश में उड़ने वाले तो थी, आकाश में उड़ने लगी और भगवान श्री कृष्ण पूतना का स्तन पकड़कर लटक रहे हैं। और पूतना जब बहुत उड़ी, भगवान श्री कृष्ण ने सारा प्राण, पूतना का अंतिम प्राण जो बचा था वह पी लिया और पूतना धड़ाम करके पृथ्वी के ऊपर गिर गई। भगवान ने निशाना लिया, पूतना उड़ रही थी और उड़ते उड़ते गोकुल में कंस का एक बहुत बड़ा बगीचा था। भगवान ने सोचा इतनी लंबी यदि हमारे खेत में गिरेगी तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए भगवान ने ऊपर टारगेट लिया, कंस का बगीचा है बस अब गिराओ, उसी के आदमी को उसी के बगीचे में गिराया। पूतना को कंस के बगीचे में गिराया, बड़े बड़े वृक्ष थे, सब वृक्ष नष्ट हो गए, गिर गए। वास्तव में एक आचार्य कहते हैं, भगवान ने पूतना के द्वारा, कंस के आदमी के द्वारा कंस का ही बगीचा नष्ट कर दिया, जैसे हनुमान। हनुमान जी एक बार लंका में गए थे और लंका में जाकर सीता जी का पता लगाए, सीता जी को मुद्रिका दी, परंतु सीता जी को कहा कि माता जी मुझे बहुत भूख लगी है, कितने दिन से यहाँ पर आया हूँ, परंतु यहाँ की बाजारों में, यहाँ की दुकानों में नॉनवेज के अलावा कुछ नहीं है, लंका में तो यही होगा, बताओ मैं क्या खाऊं। सीता जी ने कहा बाजू में रावण का एक बगीचा है, वहां जाकर फल इत्यादि खा लो। परंतु सीता जी ने कहा देखो ध्यान रहे, क्योंकि जानती थी हनुमान जी का स्वभाव, ध्यान रहे जो फल नीचे पड़े हैं उसे ही खाना। हनुमान जी ने कहा माता जी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। हनुमान जी गए, अब सीता जी ने कहा था जो नीचे पड़े हैं वही खाना, परंतु हनुमान जी जिस वृक्ष का फल खाना चाहते थे वे वृक्ष के ऊपर चढ़कर नहीं खाते थे, वृक्ष को गिरा देते थे और गिराकर जब वृक्ष गिर जाता था फिर फल खाते थे। एक एक करके रावण के सारे बगीचे को नष्ट कर दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं रावण के बगीचे को नष्ट हुए देखकर कई सारे सैनिक आए, हनुमान जी ने एक किसी को हाथ, किसी को मुक्का, किसी को लात, सब लोग वहां गिर गए। फिर रावण ने सिक्योरिटी गार्ड को भेजा, पहले गुरखे लोग आए फिर सिक्योरिटी गार्ड आए, बड़े बड़े सैनिकों को भी मार दिया। तंत्र में बहुत कुछ लीला है, परंतु जैसे हनुमान जी ने यह नष्ट, रावण का बगीचा नष्ट कर दिया, वैसे भगवान ने पूतना के द्वारा कंस का बगीचा नष्ट करवा दिया। पूतना गिरी है और धड़ाम करके जब आवाज आई, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यह पृथ्वी कांप गई, पृथ्वी हिल गई, ग्रह नक्षत्र तारे ये सब कंपित होने लगे और ब्रजवासियों को लगा कि साक्षात वज्र का पात हुआ है, वज्रपात हुआ। और सारे ब्रजवासी घर के बाहर आकर देखे तो लंबी चौड़ी पूतना, कहते 8 कोस, 6 कोस अर्थात 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी थी। कल्पना करो 18 किलोमीटर जिसका शरीर लंबा और चौड़ा है उसका रूप कितना बड़ा होगा। ब्रज में गिरी थी, सारे ब्रजवासी वहां पर आए, बहुत दुखी हुए और आकर देखे तो भगवान श्री कृष्ण पूतना के स्तन के ऊपर खेल रहे थे। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि पूतना के स्तन पहाड़ के समान थे, पूतना का शरीर बहुत विशाल था, भगवान छोटे से उसके ऊपर खेल रहे थे और बहुत भयानक शरीर था। एक बहुत सिद्धांत की बात है, वहां पर सभी गोपियां दौड़कर आई, यशोदा मैया तो इस दृश्य को देखकर मूर्छित होकर गिर गई, परंतु बाकी की जो गोपियां थी उन्होंने देखा कि यह कृष्ण पूतना के शरीर के ऊपर है, गोपियां दौड़कर गई और कृष्ण को पूतना के शरीर से उतारकर नीचे लाई। आचार्य गण प्रश्न उठाते हैं कि पूतना राक्षसी थी, मर गई थी, उनके शरीर से खून निकल गया था, तो क्या वह गोपियों को डर नहीं लगा पूतना के पास जाने में? अरे राक्षसी को छोड़ दीजिए, आज कोई मनुष्य भी मर जाता है तो उसके पास बैठने में डर लगता है, और कहते निकालो निकालो जल्दी जलाओ इसे। एक पत्नी अपने पति से कितना भी प्रेम करे परंतु जब वह मर जाता है तब उसे उसके पास बैठना भी नहीं चाहती, कहा जाए उस पत्नी को एक रात इसके साथ रहो, कोई नहीं रह पाएगा, डर लगता है। मनुष्य, मरा हुआ मनुष्य को देखकर डर लगता है, ये तो राक्षसी थी, क्या गोपियां उससे डरी नहीं? परंतु गोपियों के मन में एकमात्र कृष्ण भरे हुए थे, उनके मन में एक ही चीज थी कि कृष्ण दुखी है, कृष्ण को कैसे भी करके बचाना है, कृष्ण को कैसे भी करके सुख देना है। कृष्ण को सुख देने के लिए गोपियों को यह भी ख्याल नहीं रहा कि हम राक्षसी के शरीर के ऊपर चढ़ गई है, इसे भक्ति कहा जाता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कितनी भी आपत्ति हो, कितना भी दुख हो, इसे भूल जाना चाहिए और एकमात्र भगवान के लिए सोचना चाहिए। इस प्रकार गोपियों का प्रेम प्रकट हुआ, कृष्ण को उतारा। यशोदा मैया मूर्छित अवस्था से खड़ी हुई, कृष्ण को देखकर प्रसन्न हुई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यशोदा मैया शंकित हो गई कई राक्षसी का साया इस पर होगा। सबसे पहले यशोदा मैया कृष्ण को अपनी गौशाला में लेकर गई और कृष्ण के सिर के ऊपर बछड़े का पूंछ हिलाया। ये सत्य है, बछड़े की पूंछ बहुत पवित्र होती है, जिससे व्यक्ति और बालक पवित्र होता है। आज भी भगवान को गाय और बछड़े की पूंछ से, ये जो चामर है, वास्तव में चामर गाय और बछड़े की पूंछ से बना जाता है, उसके बालों से। परंतु आज गाय का प्रमाण बहुत कम है, इसलिए प्लास्टिक से ही बना देते हैं, परंतु गाय बहुत पवित्र है। संसार में गाय बहुत दुर्लभ है, शहरों में तो गाय दिखती नहीं है, कुत्ते जरूर मिल जाते हैं, गली गली में कुत्ते होते हैं। गाय का पूछ हिलाया, गोमूत्र से स्नान कराया, क्योंकि गोमूत्र को एंटीसेप्टिक कहा गया है। पहले कोई मेडिकल नहीं था, डेटोल साबुन लाकर इसको नहला दो। गोमूत्र से उनको कृष्ण का स्नान कराया, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन किया गया, बहुत सुंदर कृष्ण को आशीर्वाद दिया। सभी गोपियों ने मिलकर कहा कि यह देवता कृष्ण के हाथों की रक्षा करे, निमी महाराज कृष्ण के आंखों की रक्षा करे, यह देवता उनके हाथों की रक्षा करे, भगवान विष्णु इसे शक्ति प्रदान करे। बहुत बहुत रूप से कृष्ण के लिए प्रार्थना की और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अंत में कृष्ण की रक्षा करने के लिए सभी गोपियां आपस में बैठकर भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने लगी। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
और जैसे ही गोपियों ने कहते मंत्र का उच्चारण किया, महामंत्र का उच्चारण किया, कृष्ण प्रसन्न होकर हंसने लगे। वास्तव में भगवान को प्रसन्न करना है तो महामंत्र गाना चाहिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे
हरे राम राम राम।
राम राम हरे हरे।
जैसे जैसे गोपियां भगवान का नाम गा रही है वैसे वैसे भगवान हंस रहे हैं। भगवान को प्रसन्न रखने के लिए भगवान का नाम गाना चाहिए, प्रेम से गाइए। हाँ हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्णा हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
बैठिए, कथा बाकी है अभी। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अभी तो नंद बाबा नहीं आए हैं और पूतना का शरीर वैसे ही पड़ा है, इसका तो कुछ करना होगा। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे। कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो समस्त गोपियां महामंत्र भगवान के नाम का उच्चारण करने लगी हैं। शांति रखिए थोड़ा। हरे कृष्णा कृष्णा
हरे राम 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 हरे।
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम।
प्रभु जी में से आवाज नहीं आ रहा है, माताओं में से ही आ रहा है। यहां से आवाज आया इसलिए मुझे कथा याद आ गई। कद लेकिन फिर यहां दुश्मनावट हो जाएगी। नहीं चलो कह देते हैं। एक बार अकबर बीरबल की कथा तो सब लोग जानते होंगे। एक बार एक दिन सुबह अकबर उठकर मन ही मन में उसे जिज्ञासा हुई कि संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है। बीरबल को बुलाया, बीरबल आज मुझे संसार का सबसे बड़ा झूठ बोलने की सुनने की इच्छा है। बीरबल ने कहा, सरकार लोग बहुत बहुत इच्छा करते हैं झूठ बोलने की इच्छा, लेकिन राजा जो बोले वही ठीक है। संसार में अनाउंसमेंट किया गया, पैम्पलेट बांटे गए, पोस्टर लगाए गए कि जो व्यक्ति सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे राजा अकबर के द्वारा इनाम मिलेगा। और अकबर को सुनना था, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा झूठ सुनना था। तो बहुत लोग इस बात को सुनकर बहुत लोग आए, तो अकबर ने शुरू किया। एक व्यक्ति आया और सबसे बड़ा झूठ बोलना था इसमें तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे खेत में जो बड़े बड़े तरबूज होते हैं वे पेड़ पर उगने लगे। झूठ तो था परंतु इतना बड़ा झूठ नहीं था। चलो नेक्स्ट, दूसरे व्यक्ति, दूसरे ने कहा कि हमारे वहां एक मनुष्य कुत्ते को काट लिया। ये भी झूठ था परंतु अकबर को इसमें दम नहीं लगा। बहुत सारे झूठ बोले गए। नदी समुद्र से मिलते हैं परंतु झूठ बोले समुद्र नदी से मिलने लगे। बहुत बहुत झूठ परंतु किसी ने इतना अच्छा झूठ नहीं बोला। फिर अंत में एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते आया, कहा कि मैं बोलूं। अकबर ने कहा ठीक है, सब लोग बोल चुके हैं, अब तुम बोलो। उस व्यक्ति ने कहा कि अकबर जी, मैं अभी एक जगह से आ रहा हूं, वहां पर 3 महिला बैठी थी परंतु बहुत शांति थी। ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि जहां 3 महिला बैठती है वहां शांति हो ही नहीं सकती है। यहां तो 30 बैठी है, कैसे शांति होगी। खैर ये तो विनोद की बात है, केवल हंसने हंसाने की बात है। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गोपियों ने बहुत सुंदर कीर्तन किया, कृष्ण प्रसन्न हुए। सुखदेव गोस्वामी कथा को आगे बढ़ाते हैं कि उस समय यशोदा मैया फिर भी चिंतित थी, कृष्ण को कुछ हुआ तो नहीं। इसलिए यशोदा मैया ने कृष्ण को अपने गोद में रखा और गोद में बैठकर अपने स्तन का दूध पिलाया, और कृष्ण ने बहुत अच्छी तरह से दूध पिया और दूध पीकर कृष्ण आराम से सो गए। तब यशोदा मैया को हुआ कि नहीं, अब बालक ठीक है। इतने में इतना कार्य होते होते सुबह हो चुकी थी, उजाला हो चुका था, और नंद पति वच शोरे, नंद बाबा रास्ते से आ रहे थे और जैसे ही गोकुल में पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पहाड़ देखा। पहाड़ नहीं, पूतना का शरीर था परंतु पहाड़ के समान लग रहा। नंद बाबा ने सोचा कहीं मैं दूसरे गांव में तो नहीं आ गया हूं, जब गया तब मेरे गांव में ऐसा पहाड़ तो नहीं था, पहाड़ को क्या पंख आ गए, मेरे गांव में आकर रह गए। परंतु फिर भी गांव के लोगों को देखा तो नंद बाबा को विश्वास हुआ, नहीं नहीं ये मेरा ही गांव है। जैसे ही नंद बाबा गांव में आए तो कई सारे गांव के गोप जो ब्रज में थे, नंद बाबा को यह सारी कथा सुनाई। इसी प्रकार से ये घटना घटी है, यहां पर एक राक्षसी आई थी परंतु क्या पता भगवान की कृपा से वे मर गई। ब्रज में किसी को यह पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है। ब्रज वृंदावन गोकुल मथुरा वालों के लिए तो कृष्ण केवल हमारा पुत्र है, वात्सल्य भाव है, ऐश्वर्य भाव नहीं है। यद्यपि कृष्ण पूतना को मारे, अगासुर को, बकासुर को, कई लोगों को मारे, गोवर्धन तक उठा लिए, फिर भी उसे कोई भगवान नहीं मानता है। भगवान से भी ज्यादा मान्यता उसे पुत्र मानने में, भगवान भी उसे कोई भगवान, कृष्ण को कोई भगवान कहता है तो इतना आनंद नहीं आता है। अरे सारे कोई यदि गाली देता है तो कृष्ण को बहुत आनंद आता है। अरे सारे काले कलूटे एक जगह पर लिखा है, सो नहीं साद ब्रह्म स्तुति में ऐसी ब्रज की मीठी गारी। ब्रह्मा जी बहुत बड़ी बड़ी स्तुति करते हैं, परंतु वो आनंद जो आनंद ब्रज की गालियों में है, वो आनंद ब्रह्मा जी की स्तुति में भी नहीं, ओम जय जगदीश हरे में वो आनंद और वह सुख नहीं है जितना सुख माता के लालन पालन में है। तो भगवान श्री कृष्ण, मैं क्या कह रहा था, नंद बाबा है, नंद बाबा गोकुल में आए हैं और सब लोगों ने यह खबर बताई कि इस प्रकार से यह घटना घटी है। नंद बाबा ने प्रथम यह कहा, कृष्ण को तो कुछ नहीं हुआ ना, कहा कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, परंतु नंद बाबा तो गोकुल के राजा थे। नंद बाबा ने कहा ठीक है चलो सब कुछ हो गया, परंतु मन में यह सोचा, देखो वसुदेव जी ने जो कहा था वे होकर रहा, मैं जो रास्ते में सोच रहा था वे चिन्हवंत वो सत्य निकला। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उस समय नंद बाबा ने वसुदेव जी को ऋषि संबोधन किया। वसुदेव जी साधारण व्यक्ति नहीं, वे ऋषि मुनि हैं, वास्तव में ऋषि के समान है। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, अब पूतना नाम की राक्षसी ब्रज में पड़ी है, अब उसका क्या करे। तब नंद बाबा ने सभी गोपों को कहा कि इसको न तो हम जला सकते हैं, न तो फेंक सकते हैं, न तो उठा सकते हैं, क्या किया जाए। तब नंद बाबा ने मंत्रणा दी, एक काम करो, हम इस पुतना के शरीर को थोड़ा थोड़ा करके काटते हैं और फिर उसे जलाते हैं। तो 1000 कुल्हाड़ी मंगाई गई और सारे ब्रज के गोप पुतना के शरीर को काटने में लग गए। उनका अंगूठा भी इस बिल्डिंग की तरह बड़ा था इतना बड़ा तो शरीर था। तो पूतना के शरीर को काट काट कर और चिता बना बना कर उसमें जलाने लगे। सुखदेव गोस्वामी इस लीला के अंत में कहते हैं, एक एक अंग को एक एक काट काट कर जब जलाने लगे, जब पूतना का शरीर जल रहा था तब उसके शरीर से अगरु की सुगंध आने लगी। अगरु का अर्थ आप जानते हैं, ये जो अगरबत्ती नाम बना है, ये अगरबत्ती अगरु से नाम बना है, अगरु से बहुत सुगंध आती है। और अभी हमारे वर्तमान समय में जो अगरबत्ती मिलती है उसमें 1% भी अगरु नहीं रहता है, फिर भी उसे अगरबत्ती कहते हैं। एक बार हमारे गुरु महाराज लंदन में गए थे, तो वहां पर यही प्रवचन यही कथा कर रहे थे। कथा के बाद जब वे अपने घर पर जा रहे थे जहां पर उनको रखा गया था, तो वहां के यजमान ने कहा कि महाराज जी आपने चाइना अगरबत्ती का नाम सुना है, तो चाइना वाले अगरबत्ती भी बनाने लगे हैं। कहा नहीं, ये जो आपके भारत में अगरबत्ती अगरू से बनती होगी, परंतु चाइना में जो अगरबत्ती है वे सुअर के मल से बनती हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। यहां पर भी अगरू से नहीं बनाते, गाय का गोबर थोड़ा थोड़ा कपूर जैसा कुछ होता है। खैर, परंतु यहां ब्रज वृंदावन में अगरू की सुगंध कई कोस तक यह सुगंध फैल गई। प्रश्न उठा, बालकों को खाने वाली मांस मदिरा खाने वाली के शरीर से अगरु की सुगंध कैसे आने लगी, प्रश्न हो सकता है। मनुष्य को भी यदि जलाएंगे तो उससे सुगंध नहीं आती। यह शरीर इतना अपवित्र है, इतना अपवित्र है कि शरीर के साथ यदि कोई संस्पर्श भी हो जाता है तो वह भी अपवित्र हो जाता है। ये कपड़े रोज सुबह पहनते परंतु शाम को धोने पड़ते हैं, कितने भी अच्छे क्यों ना हो। इतना सुंदर गुलाब जामुन रसगुल्ला डिस्प्ले में रखा हुआ होता है दुकान में, हम देखते हैं, देखकर मुंह में पानी आ जाता है, परंतु जैसे ही वह रसगुल्ला इस शरीर के साथ स्पर्श होता है तो बेचारे की हालत बिगड़ जाती है कितना भी अच्छा कितना भी डिस्प्ले में रखा गया हो, जैसे ही व्यक्ति इसे खा लेता है, केवल 10 इस शरीर में रहने के बाद उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। शरीर अविद्या का जाल है, इतना दूषित यह शरीर है, इतना पवित्र है और उसमें राक्षसी का शरीर, और उसे जलाने पर अगरू की सुगंध क्यों आ गई। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्योंकि उसे भगवान ने स्पर्श कर दिया था। भगवान जिसे स्पर्श कर दे वे तो परम पवित्र हो जाता है। पूतना यद्यपि अपवित्र थी परंतु जैसे ही कृष्ण ने पूतना को स्पर्श कर दिया वे परम पवित्र हो गई। और वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं। अंत में यह भेद खुलता है, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं, पूतना को तार दिया। क्योंकि भगवान किसी को मारते नहीं है, तारते हैं। पूतना को मां की गति प्रदान की। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यह पूतना मां बनकर आई है, इसलिए पूतना को उसी समय अपने धाम में भेज दिया और भगवान के धाम में पूतना को भगवान ने अपनी मां बना लिया। आज भी पूतना भगवान की मां के रूप में उपस्थित है। मां बना, जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी भगवान ने उसे मां बना दिया। यह वास्तव में यह एक ऐसी लीला है। यह लीला को सुनकर विदुर जी और इस कथा को कहने वाले मैत्रेय मुनि का हृदय भर आया। उनकी आंखों से अश्रु की धारा निकलने लगी। ये वह लीला है जिस लीला को सुनकर सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म समाधि में लीन हो चुके थे। भक्ति नहीं करते थे, ब्रह्मानंद का आनंद ले रहे थे, परंतु जैसे ही उन्होंने यह श्लोक सुना, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिंगा सयापा यत अपीय साधवी लेभे गतिम दात्री उचिताम ततोव्यम कंबा दयालुम शरणम रजेम। सुखदेव गोस्वामी ने जब यह सुना, इस लीला को सुनकर सुखदेव गोस्वामी की समाधि टूट गई। ब्रह्मानंद भी तुच्छ लगने लगा इस लीला के द्वारा, क्योंकि इस लीला में भगवान की कृपा की हद बताई गई है। भगवान कृपालु है परंतु इतनी कृपा इस संसार में कोई कर ही नहीं सकता है। कितनी कृपा, जो पूतना मारने के लिए आई है और स्तन पर कालकूट नाम का विष लगाकर आई है कि मैं उसे मार डालूंगी, ऐसी राक्षसी को अपनी मां बना लेना, ऐसा काम मात्र भगवान कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके सामने कोई आए और एक थप्पड़ मारकर दो गाली दे दे, आप उसे अपना बाप बना लेंगे, पिता बना लेंगे, जीवन भर उसके साथ द्वेष करेंगे। रावल प्रभु कहते हैं टपका देंगे उसको, द्वेष करेंगे। कोई आपके सामने आए और बंदूक लेकर खड़ा रहे कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, और मार डाले, गोली चला दे, विष पिला दे, तो क्या मुंह से पिताजी कहेंगे, पिताजी बहुत अच्छा हुआ आप आए, धन्यवाद आपका, मैं आज से आपको अपना पिता और मां बनाता हूं। कभी तो मात्र भगवान, अरे भगवान भगवान है, जीव जीव है, भगवान की अद्भुत करुणा है, अद्भुत कृपा है। आपने देखा ना, भगवान को मारने के लिए आई थी परंतु लेभे गतिम धात्री, भगवान ने उसे धात्री बना दिया, मां बना दिया। ये है भगवान। सुखदेव गोस्वामी अंत में कहते हैं, मान लो प्रश्न उठा कि भगवान को मारने के लिए आई थी फिर भी भगवान ने उसे मां क्यों बनाया, उसे स्वीकार क्यों किया, तो पूतना में एक गुण था। वैसे तो सभी ओर से अवगुण था, पवित्र थी, परंतु एक कार्य पूतना ने जो किया बहुत अच्छा कार्य किया, और वह कार्य यह था, वे जब भगवान के पास आई तो भक्त का वस्त्र पहन कर आई। भगवान ने एक गुण देख लिया बस काफी है। भगवान सदैव भक्तों के गुण को देखते हैं, दोष को नहीं देखते हैं। हमारे कृष्ण कभी किसी के दोष को नहीं देखते हैं। भावग्रही भगवान भाव देखते हैं, काम को नहीं देखते हैं, भावग्रही जनार्दन। और ये देवी देवता पितृ ये सब कार्य को देखते हैं। यदि थोड़ा सा भी गलत कार्य कर दिया तो नड़ने लगते हैं, परंतु भगवान की भक्ति में कितना भी त्रुटि हो, कितनी भी भूल हो, आप देखिए पूतना से बड़ी भूल कौन कर सकता है, परंतु फिर भी भगवान ने अपना धाम तो दे दिया, धाम के साथ साथ अपनी मां बना लिया। ये है भगवान की कृपा, असीम कृपा, असीम अनुकंपा है। भगवान के प्रति भाव होना चाहिए, भाव देखते हैं। कर्माबाई का नाम आपने सुना होगा। एक बूढ़ी महिला थी, जगन्नाथ जी की भक्ता थी। बुढ़ापा आ गया था और जगन्नाथ जी के लिए रोज सुबह खिचड़ी का प्रसाद बनाती थी, परंतु बुढ़ापा होने के कारण सुबह जल्दी उठ नहीं पाती थी और जगन्नाथ जी के खिचड़ी भोग का समय हो जाता था। तो भगवान के लिए खिचड़ी तो बनाती, परंतु खिचड़ी बनाते समय वह दातुन करती थी। दातुन करते हैं, शहरों में ब्रश करते हैं, गांव में दातुन करते हैं। दातुन कर रही थी, दातुन करते करते खिचड़ी को जब हिलाना हुआ तो जो दातुन अपने दांत से घिस रही थी पीछे के भाग से वह खिचड़ी को हिलाती थी। आज का साधारण व्यक्ति भी वह खिचड़ी नहीं खाएगा, परंतु साक्षात जगन्नाथ जी अपने जगन्नाथ जी के मंदिर से निकलकर कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए आते थे। भगवान कार्य नहीं देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं। इसका भाव कितना शुद्ध, कार्य नहीं देखते, भाव ग्रही जनार्दन। इसलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से भोग लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये देखा कि पुतना भक्त का वस्त्र पहनकर आई है। भक्तों, हम सब अपने आप को भक्त मानते हैं, समझते हैं भक्त बनना है, परंतु भक्त का वस्त्र पहनना ये भी बहुत बड़ी भक्ति है। हम सब भक्तों को चाहिए कि एक वैष्णव आभूषण, वैष्णव ड्रेस पहने। पूतना में कोई गुण नहीं था, केवल गोपी ड्रेस पहना था, गोपी का वस्त्र पहना था। भगवान ने अपना लिया, स्वीकार कर लिया। हमारे हृदय में हो सकता है भाव की कमी है, भक्ति की कमी है, परंतु हम धोती कुर्ता कंठी और तिलक धारण करेंगे और शिखा रखेंगे, निश्चित भगवान हमको अपना लेंगे। क्योंकि भगवान दोष नहीं गुण देखते हैं। इसलिए सदैव हमें कंठी माला और तिलक धारण करना चाहिए और सदैव भगवान के पवित्र वस्त्र पहनने चाहिए, जिससे भगवान हमें स्वीकार करे। कहने के लिए बहुत कुछ है, समय अपनी मर्यादा को लांग चुका है। प्रवचन केवल एक डेढ़ घंटा करना था, हमने 3-4 घंटा प्रवचन कर दिया, परंतु इतना ही समझिए, कृष्ण बहुत कृपालु हैं और उनकी कृपा का कोई पारावार नहीं है। हे कृष्ण करुणा सिंधु, जैसे सागर में पानी ही पानी होता है, वैसे भगवान में कृपा ही कृपा है। इस भगवान कृष्ण की शरण में चले जाइए, निश्चित वे कृपा करेंगे। इस लीला से यह सिद्ध होता है कि यदि कोई कृष्ण की शरण में एन केन प्रकारेण कैसे भी चला गया, इसे नहीं कि भाव होना चाहिए, प्रेम प्रेम नहीं है, भाव भी नहीं है, परंतु कृष्ण के पास हम चलकर जाते हैं और वैष्णव वेशभूषा है, निश्चित भगवान हमें स्वीकारेंगे। तो हम सबको भगवान के प्रति यह प्रेम और वेशभूषा। सुखदेव गोस्वामी अंत में यहां तक कह दिए, प्रश्न उठाकर कहते हैं कि देखिए, यह जन्म से राक्षसी थी, राक्षस कुल में इनका जन्म हुआ था, और भाव क्या था, कृष्ण को मारने के लिए आई थी, इरादा भी गलत था और उनके सुकृत कर्म भी अच्छे नहीं थे, फिर भी भगवान ने उसे अपना लिया। तो हमारा तो अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, मनुष्य योनि में है, और हम तो इस मुख के द्वारा उनका कथा और कीर्तन भी कर सकते हैं और हम हमारा भाव और प्रेम भी बढ़ा सकते हैं, भगवान हमें क्यों नहीं मिलेंगे। पुतना जैसी राक्षसी को भगवान मिल गए, अपने धाम में मां की गति प्रदान की, तो हम पुतना ने तो द्वेष से भगवान के पास गई थी, परंतु हम तो प्रेम से श्रद्धा के साथ भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमें क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, अर्थात अवश्य स्वीकार करेंगे। भगवान सदैव कृपालु हैं, हमें स्वीकार करने वाले हैं, इसलिए हमें सदैव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
और अंत में सुखदेव गोस्वामी ये पूतना की कथा सुनने का श्रुति फल बताते हैं कि हे परीक्षित, जो व्यक्ति पूतना वध की कथा सुनता है, श्रुणुया श्रद्धया मर्त्यो, मर्त्यो मनुष्य के लिए कह रहे हैं, जो मनुष्य श्रद्धा से पूतना की कथा सुनता है या पूतना की कथा करता है, उसे क्या प्राप्त होता है। कहते हैं, गोविंद लभते रति, पुतना की कथा सुनने वाले को गोविंद लभते रति, गोविंद के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। भक्तों बताइए इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। अद्भुत कथा है, इस कथा को सुनकर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना है, सदैव इस प्रकार कृष्ण की कथा सुनते रहिए। कृष्ण की अनंत कथा है, जैसे ये पुतना की कथा मैंने आपको 3-4 घंटे में सुनाई, ये 2 मिनट में भी सुनाया जा सकता है। और 3-4 घंटा नहीं, ये एक कथा 7 दिन तक सुना सकते हैं यथा समय समय के अनुसार, क्योंकि इस कथाओं में बहुत बहुत गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। समय के अनुसार मैं सब नहीं कह सका हूं, परंतु फिर भी अलग अलग भक्तों से आचार्यों से यह सुनते रहना चाहिए। भगवान की कथा सुनना बोलना यही हमारा जीवन है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि कथा करते करते कथा सुनते हुए प्राण निकल जाए, इसी में जीवन की सार्थकता है। बाकी संसार में कितना भी धन हो, गाड़ी बंगले, ये कुछ साथ में नहीं आएंगे। व्यक्ति धन प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करता है, गधा बन जाता है, परंतु मरने के बाद कुछ साथ में नहीं आता है। जीवन में यदि भगवान के बारे में सुना है, कुछ भगवान का नाम लिया है, यह सदैव हमारे साथ रहता है। यदि कमाना ही चाहते हो तो कमा लीजिए भगवान की कथा को और कमा लीजिए भगवान के नाम को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे।
आप सबका धन्यवाद जो बड़े प्रेम से और श्रद्धा से यहाँ पर आए और भगवान की कथा सुने, और मुझे भी कृष्ण की कथा सुनाने में मेरी मन और बुद्धि को लगाए। वास्तव में मैं आप सबका ऋणी हूँ, क्योंकि आप नहीं होते तो मैं कहाँ जाकर यह कथा करता। हरे कृष्णा।